समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सहर हुई है, चलो अब उठो, खुली हवा में सांस लो, नए दिन की शुरुआत करो और खुशियों से दामन भरो। गुलजार साहब की इस शायरी में सुकून, उम्मीद, ताजगी और खूबसूरती का एहसास होता है। इसी खूबसूरत एहसास और ताजगी के साथ हम जुड़ चुके हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेनु कटारिया। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार एंड रेनु, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
वेरी गुड मॉर्निंग जया एंड अ परफेक्ट कोट फॉर दिस अर्ली ब्यूटिफुल मॉर्निंग दैट यू हैव told us and to our listeners, and we are once again welcoming our listeners who are tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. And dear listeners, as every day, our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we're going to give you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 24th of July. So there is so much in store for all our listeners, but let's begin with the news headlines first, Jaya.
Yes.
Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his British counterpart Keir Starmer in London today. The wide-ranging talks are expected to focus on imparting a new momentum in the strategic ties between the two countries. Prime Minister Modi arrived in UK last night on a two-day visit to expand the bilateral ties in areas of defence, trade and technology. The two countries will also sign a landmark Free Trade Agreement or FTA. The trade deal, firmed up after 3 years of negotiations, is expected to ensure comprehensive market access for Indian goods across all sectors, and India will gain from tariff elimination on about 99% of product categories, covering almost 100% of the trade values. We have more from our correspondent.
When Mr. Modi reached London, he was welcomed with much enthusiasm by the Indian diaspora waiting to see him.
Bharat Mata Ki Jai!
Bharat Mata Ki Jai!
Modi! Modi! Modi!
The Prime Minister shook hands with many as the crowd cheered him and cultural troops played music of different states of India. Some of the persons, including women, got emotional as well, seeing Mr. Modi face to face. He also met the winners of No India program. People from all age groups were excited to see him.
बहुत खुशी की बात है कि वो यहाँ पर हमारे बीच रहेंगे। सबके चेहरे पर देखिए यहाँ पर मुस्कान है। बच्चियाँ आई हैं आपको और महिलाएं तो चारों तरफ से आई हैं। हर देश से 28 states, 8 union territories से सब जगह से यहाँ के जितने association के लोग आए हैं।
मेरा नाम वैदेही है और मैं यहाँ एक साल से यूके में रह रही हूँ। मोदी जी को हमेशा मैंने टीवी पे ही देखा है, उनके सारे स्पीचेस मैंने हमेशा टीवी पे ही देखे हैं, एंड इट इज़ माय फर्स्ट टाइम सीइंग हिम इन पर्सन एंड दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी एज एन इंडियन। आई वेरी फ्यू पीपल हैव द प्रिविलेज टू मीट हिम इन दिस काइंड ऑफ सेटअप, सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम।
Mr. Modi will interact with Mr. Starmer today on wide-ranging issues to further enhance the economic partnership aimed at fostering prosperity, growth and jobs creation in both countries. Signing of the FTA will further strengthen the historical relations between both the countries. Later in the evening, Mr. Modi will call upon King Charles III as well. Rajesh Bali, Akashwani News, London.
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। यह नीति एक प्रमुख सुधार पहल है। इससे अगले करीब दो दशक 2025 से 2047 तक भारत का सहकारिता आंदोलन निर्देशित होगा। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और इसे सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। यह नीति जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की कार्य योजना का आधार बनेगी और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाएगी। देश में पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन था। नई नीति सहकारी संस्थाओं को अधिक समावेशी, पेशेवर रूप से व्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 वर्ष पहले पूरा कर लिया है। श्री पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2014 में केवल 1.5% से 2025 में 20% एथेनॉल मिश्रण का स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने से 1,36,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इससे 1,18,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं और 698,00,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है।
The Ministry of Information and Broadcasting says India has a vibrant press and media ecosystem with over 1.55 lakh publications and 908 private TV channels. In a written reply in Lok Sabha, Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan said that the number of publications registered with the Press Registrar General of India has increased from 1,05,000 in 2014-15 to 1,55,000 in 2024-25. The number of private satellite TV channels have also increased from 821 in 2014-15 to 908 in 2024-25. Jaya, as of now, 92 private channels and 50 Doordarshan channels are available on DD Free Dish. In another reply to the question, Dr. Murugan said that the government has taken various proactive measures to increase the representation of South Indian language channels on DD Free Dish. He informed that for better regional representation, slots had been reserved for South Indian language channels in the e-auctions of DD Free Dish platform. Eligibility norms have been simplified to ensure greater participation from private broadcasters in the southern region.
और रेणु लोकसभा से एक और खबर है जहां केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने कहा है कि सरकार सभी राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉक्टर मुर्गन ने कहा कि लोक प्रसारण को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना के तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2021 से 2026 तक के लिए 2,539 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय से इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विशेष रूप से डिजिटीकरण और प्रसारण संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने बिहार में प्रसारण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृति की है।
Moving on to some international news, India will resume issuing tourist visas to Chinese citizens from today after a gap of 5 years. In a social media post, Indian Embassy in Beijing said that Chinese citizens can apply for a tourist visa to India after completing an online application, scheduling an appointment and personally submitting their passport and other required documents to the Indian visa application centers in Beijing, Shanghai and Guangzhou. More from our correspondent.
The development comes at a time when both the countries are trying to ease tensions and improve ties that plummeted following the Galwan Valley clashes in 2020. The two sides had also decided to resume Kailash Mansarovar Yatra this summer. The direct air services and Kailash Mansarovar Yatra were suspended since the COVID pandemic and Galwan crisis. The two countries recognized that 2025 being the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and China should be utilized to redouble diplomacy efforts to restore mutual trust and confidence among the public. In addition to this, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar visited China this month, his first trip to the neighboring country in 5 years. Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
Karkid Daka Vavu Bali, a significant Hindu ritual held in memory of departed ancestors, commenced in Kerala during the early hours today. The rituals are being observed as a mass event at various temples and riverbanks across the state. We have a report.
The ritual is performed on the new moon day, Amavasi of the Malayalam month Karkidakam. Devotees, men, women and children offer ritualistic homage called Beli to their ancestors on this sacred day. Prominent gatherings are being witnessed at the banks of Periyar River in Aluva and various coastal locations such as Papanasham, Varkala, Thiruvallam, Shankhumukham and Varakkal beaches from the early morning. Efforts are underway to maintain green protocol during the ritual. Civic bodies and district administrations have issued necessary guidelines to ensure an eco-friendly observance. M. Smithy, Agashwani News, Thiruvananthapuram.
Jaya, let's move on to the world of sports and listen in to Ashish. What do we have from the world of sports from him?
In chess, India's Divya Deshmukh thrashed China's Tan Zhongzhi 1.5-0.5 in the semi-finals of the FIDE Women's World Cup 2025 to secure a spot in the final in Batumi, Georgia. With this win, Deshmukh also claimed a spot in the candidates' tournament set to happen in 2026, while also securing her first Grandmaster nom. The 19-year-old also became the first Indian to enter the final of FIDE Women's World Cup. Divya will take on the winner of the second semi-final played between top seed China's Lei Tingzhe and India number 1 Koneru Hampi. In cricket, India will resume their first innings against host England on day 2 of the 4th test of the Anderson Tendulkar Trophy series at Old Trafford in Manchester today. The match will begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier, bad light brought early stumps on day 1 with India reaching 264 for 4 in 83 overs. Currently, visitors are trailing 1-2 in the 5-match series. In football, the Durand Cup 2025 tournament got underway with East Bengal beating South United Football Club 5-0 in the opener at the Vivekananda Yuva Bharati Krirangan in Kolkata yesterday. On to badminton, India's PV Sindhu scripted a thrilling win over Japan's Tomoka Miyazaki 2-1 and stormed into the women's singles pre-quarterfinals at the China Open 2025 in Shangzhou. In another women's singles clash, India's Unnati Huda knocked out Scottish shuttler Kirsty Gilmore 2-0 to enter the pre-quarter quarterfinals. With Sanyukta's report, Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
और अब रुक करते हैं प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल. रेनू.
Thank you, Jaya. I will begin with Bengaluru Metro. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has assured uninterrupted power supply across the state. He was speaking at the 56th Foundation Day celebration of Karnataka Power Corporation Limited in Bengaluru yesterday. The Chief Minister informed the state has achieved self-sufficiency in power generation and necessary steps will be taken to avoid any shortages in the future. Chief Minister Siddaramaiah said every village in the state is electrified today. Speaking about the vacant post in the corporation, he assured that after discussion with the Energy Minister and KPCL Managing Director, necessary steps will be taken to fill them. And the Energy Minister in the state, KJ George, has informed that energy storage capacity is enhanced in the state at 2,000 megawatt storage in Sharavati and another at Varahi with 1,500 megawatt is being envisaged. Once operational, these storage facilities will help meet peak hour demands for electricity.
अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार की दिल्ली के बाजारों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है. मुख्यमंत्री ने कल दिल्ली सचिवालय में व्यापारियों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी दिल्ली के बाजारों के विकास को लेकर सरकार ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई है. उन्होंने कहा कि पुरानी दिल्ली में दुकानें, छोटे गोदाम और ऑफिस के सामान के स्टोरेज के लिए दिल्ली के बाहरी इलाके में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्या को सुलझाने के लिए और उन्हें भयमुक्त व्यापार करने की दिशा में सरकार ने दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का भी गठन किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को राजधानी में टैक्स फ्री करने की भी घोषणा की है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह फिल्म समावेशन को लेकर एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती है. मुख्यमंत्री ने इसे भावनात्मक और प्रेरक कहानी बताते हुए दिल्ली सरकार राष्ट्र की सेवा भावना को मजबूत करने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध बताया. श्रीमती गुप्ता ने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं.
I think we all have to go and watch this movie then, Jaya. So moving on to Hyderabad Metro. In Telangana, several districts received heavy to extremely heavy rainfall during the past 24 hours, flooding streams, lakes and roads. Traffic diversions and emergency measures have been prompted at some places. And there's one more news from Hyderabad. Mulugu District Collector has urged the public to avoid venturing out, especially across bridges and highways with flowing floodwaters. Fishermen were advised to stay ashore. Traffic was disrupted following a temporary road over a stream, Ralavagu, in this district. People in vulnerable low-lying areas near River Godavari have been asked to prepare for relocation, and amenities are being readied at rehabilitation centres. Residents in old, unsafe houses were also urged to move to safer places.
अब समय है महाराष्ट्र की खबरों का। मध्य रेल आगामी गणपति महोत्सव के दौरान भक्तों की सुविधा के लिए 250 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गणपति स्पेशल ट्रेनों के लिए आरक्षण आज से सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगा। वहीं मुंबई स्थित पत्र सूचना कार्यालय PIB आज नंदुरबार जिले के मीडिया जगत के लिए कौशल के से स्थायित्व तक विषय पर एक मीडिया सम्मेलन वार्तालाप का आयोजन करेगा। पत्रकारों को प्रामाणिक, सामयिक और प्रभावशाली जानकारी प्रसारित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम संवाद और प्रतिक्रिया के लिए एक मंच प्रदान करता है। वार्तालाप के साथ साथ केंद्रीय संचार ब्यूरो 24 से 26 जुलाई तक छत्रपति शिवाजी नाट्य मंडी में स्वास्थ्य और पोषण पर एक विशेष सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजन भी कर रहा है। प्रदर्शनी स्थल पर प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की जाएंगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी FM गोल्ड पर जया और रेनू के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। दिल्ली में आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा के भी आसार हैं। राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, तेज वर्षा का भी अनुमान है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है, बिजली कड़कने और आंधी की आशंका है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
एंड मूविंग ऑन टू चेन्नई, जया। Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. And Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की।
Exactly. And let's begin with the year 1923. On this day, Jaya, the Treaty of Lausanne, the final treaty concluding World War I, was signed as Lausanne, Switzerland.
और आज ही के दिन 1932 में रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी।
And on this day in 1969, Apollo 11, the US spacecraft that had taken the first astronauts to the surface of the moon, safely returned to Earth.
S. Vijayalakshmi ne varsh 2000 mein aaj hi ke din desh ki pehli shatranj mein apne dhairya se pratidwandi ko galti karne par majboor karne wali mahila grandmaster hone ka gaurav hasil kiya tha.
Exactly. And you know what else is the day today, Jaya? आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इनकम टैक्स डे।
यस।
सो इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th of July मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज फिस्कल हिस्ट्री। दिस डे कमेमोरेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया बाय सर जेम्स विल्सन इन 1860। एंड जया, आपको पता है इनकम टैक्स डे नॉट ओनली ऑनर्स द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बट ऑल्सो हाईलाइट्स द कंटिन्यूस एडवांसमेंट्स इन मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स aimed at creating a more efficient and taxpayer-friendly system. तो ये थे आज जितने भी घटनाएं हिस्ट्री में हुई थी उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी.
जी बिल्कुल. और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. तो आज पुण्यतिथि है हिंदी और बांग्ला सिनेमा के अभिनेता उत्तम कुमार की. उत्तम कुमार का जन्म 3 सितंबर 1926 को कोलकाता में हुआ था. वे भारतीय सिनेमा में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे. उनका मूल नाम अरुण कुमार चटर्जी था. मुख्य रूप से बांग्ला सिनेमा में काम करने वाले उत्तम कुमार एक अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक, निर्माता, गायक और संगीतकार भी थे. बांग्ला सिनेमा में उत्तम कुमार को महानायक की पदवी दी गई थी. बतौर नायक अभिनेता उत्तम कुमार की पहली फिल्म दृष्टिदान थी, जिसे मशहूर निर्देशक नितिन बोस ने निर्देशित किया था. सुचित्रा सेन के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई थी. सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत.
आमी जे चेये देखी सारा दिन, आज ओई चोख सागरे रुनी, आमी ताई की गान गाई की, बुझी मोने मोने होए गेलो मी. आमी चेये चेये देखी सारा दिन,
रेनु बंगाली के साथ साथ उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया था.
आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू से दैट जया, बिकॉज ही हैज वर्कड इन सम ऑफ द बेस्ट मूवीज. और आपको पता है ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स इन बंगाली सिनेमा हिस्ट्री एज वेल एज हिंदी. एंड ही वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर हिज वर्क इन एंटनी फिरंगी इन द year 1967 and Chiriya Khana also in the year 1967. But here we are going to listen in to a very beautiful song from the movie Anand Ashram, jo ki bani thi 1977
mein.
आज पुण्यतिथि है मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद यशपाल की. यशपाल भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे जिन्होंने देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को निखारने में खास योगदान दिया था. उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हुए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजा था. यशपाल दूरदर्शन पर टर्निंग पॉइंट 9 नाम के एक साइंटिफिक कार्यक्रम को भी होस्ट करते थे. भारत में उनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है. आज ही पुण्यतिथि है अमला शंकर की भी. मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था. वे अपने समय के प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर उदय शंकर की पत्नी और दिग्गज सितार वादक पंडित रवि शंकर की भाभी थीं. अमला शंकर ने उस दौर में नृत्य का प्रशिक्षण लिया था जब महिलाओं के नाचने को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था. कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था. उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2012 में संगीत नाट्य अकादमी टाइगर रत्न पुरस्कार भी मिला. अमला शंकर ने साल 1948 में कल्पना फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी. यह फिल्म उदय शंकर ने बनाई थी. फिल्म की कहानी युवा नर्तकों के सपनों और नृत्य अकादमी पर आधारित थी. आइए सुनते हैं फिल्म का वह गाना जिस पर उन्होंने नृत्य कर सभी का मन मोह लिया था.
রঙিন শাড়ি গায়ে গৌর বরণ দেখা দায় বাজে নুপুর রঙা পায় কে গো কার গরণি
আজ ই পুণ্যতিথি হ্যা উরুপি রামচন্দ্র রাও কি জো ভারত কে অন্তরিক্ষ বৈজ্ঞানিক আর ইসরো কে পূর্ব অধ্যক্ষ ভি রহ চুকে হ্যাঁ. वे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के शासी परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे. उनको भारत सरकार द्वारा 1976 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण और वर्ष 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.
Today is the birthday of Jennifer Lynn Lopez, also known by her nickname J-Lo, who is an American singer, songwriter, actress, dancer, and businesswoman. Lopez is regarded as one of the most influential entertainers of her time, credited with breaking barriers for Latino Americans in Hollywood and helping propel the Latin pop movement in music. और अगर हम इनके accolades की बात करें तो उसमें she has a Hollywood Walk of Fame, the Billboard Icon Award, 3 American Music Awards, 4 MTV Video Music Awards and 6 Guinness World Records. So let's listen into this beautiful song sung by Jennifer Lopez.
हम याद कर रहे हैं पन्ना लाल घोष को. आज उनकी जयंती है. उनका वास्तविक नाम अमल ज्योति घोष था. वे भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे. पंडित पन्ना लाल घोष बांसुरी के मसीहा, नई बांसुरी के जन्मदाता और भारतीय शास्त्रीय संगीत के युग पुरुष थे, जिन्होंने लोक वाद्य बांसुरी को शास्त्रीय के रंग में ढालकर शास्त्रीय वाद्य यंत्र बना लिया था. उन्हीं की बांसुरी की आवाज में उन्हें एक श्रद्धांजलि. उर्दू के प्रसिद्ध कवि और शायर नाजीश प्रतापगढ़ी की भी आज जयंती है. नाजीश को भारत की धरती से विशेष लगाव था. देश के विभाजन के बाद उनके माता पिता, भाई बहन आदि सभी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन नाजीश ने भारत में ही रहना स्वीकार कर लिया था. उन्होंने लिखा है, खुदाई काश नाजीश जीते जी वो वक्त भी लाए कि जब हिंदुस्तान कहलाएगा हिंदुस्तान आजादी.
Today we are talking about Azim Premji, who is an Indian business tycoon and philanthropist, best known as the chairman of Wipro Limited, one of India's leading IT services company. He was born on this day in 1945 in Mumbai, and throughout his career he has been a prominent figure in the Indian IT industry and has made significant contributions to the country's economy. Aur hum ek aur bahut hi prasiddh नाम के बारे में और बात करना चाहेंगे. जया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमिलिया मेरी एहार्ट, जिनका की आज बर्थ एनिवर्सरी है. शी वॉज एन अमेरिकन एविएशन पायनियर एंड ऑन 2 July 1937 शी डिसअपियर्ड ओवर द पैसिफिक ओशन व्हाइल अटेम्प्टिंग टू बिकम द फर्स्ट फीमेल पायलट टू सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड. एंड ड्यूरिंग हर लाइफ एहार्ट एम्ब्रेस्ड सेलिब्रेटरी कल्चर एंड वुमेन्स राइट्स, एंड सिंस अ डिसअपियरेंस हैज बिकम अ ग्लोबल कल्चर फिगर.
और आज ही जयंती है अभिनेता मनोज कुमार की. मनोज कुमार का पूरा नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था. उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ था और इसी वर्ष अप्रैल में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. वे फिल्म जगत के प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रह चुके हैं. कुमार ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फैशन से की थी, जो 1957 में आई थी.
But you know what, Jaya, his breakthrough came in 1962 with Vijay Bhatt's Haryali Aur Rasta opposite Mala Sinha. So let's listen into this beautiful song from this movie.
Sari raat jaage, Allah jaane kya hoga aage, O Mala jaane kya hoga aage.
Dil mein tere ulfat ke bandhne lage dhaage, Allah jaane kya hoga aage, O Mala jaane kya hoga.
Aur Renu apni hi लिखी हुई फिल्मों के जरिए मनोज कुमार ने लोगों को देशभक्ति की भावना का गहराई से एहसास कराया था. मनोज कुमार शहीद आजम भगत सिंह से बेहद प्रभावित हैं और इसी भावना से उन्हें शहीद जैसी कालजयी फिल्म में देश के इस अमर सपूत के किरदार को जीवंत करने की प्रेरणा दी थी.
एंड यू नो व्हाट, दिस मूवी वाज मेड इन द ईयर 1965 व्हिच आल्सो मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ कुमार्स राइज टू स्टारडम. हिज फर्स्ट रिलीज वाज द पेट्रियोटिक ड्रामा शहीद, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ शहीद भगत सिंह. एंड इट रिसीव्ड हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स responses from critics as well as the then Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, and was a box office success.
और 1992 में मनोज कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गाना काफी हिट है, ये सुनते हैं।
है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला।
और श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दे जया भारती और रेणु कटारिया को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहे आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश।
नमस्कार।